તારીખ 25/12/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 710 અને 108 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 142
रहा करे इसके आत्म स्वरूप की निरंतर प्रतीति रहा करे उसे क्षायिक समय तो कभी जाता है सादी अनुकार क्यों कि वहां निच्छात्मक प्रकृति का और अंतन मंत्र की प्रकृति का सातों प्रकृति का तीन चार पर तो चार अंतन मंत्र सातों द्रव्य कर्मों की प्रकृति का क्षय हो चुका है यानी नाश हो गया है मूल में से इसीलिए उसको क्षायिक संकेत कहते हैं और वो क्षायिक संकेत तो का परिणाम ऐसा है जो निरंतर रहता है शादी जब से उत्पन्न होता है अनंत काल तक वो निरंतर रहता है इसलिए उसे क्षायिक समय क्वचित मंद क्वचित तीव्र क्वचित विसर्जन क्वचित स्मरण रूप ऐसी प्रतीति रहे उसे क्षयोक्षम समय कहते हैं यानी ये सात प्रकृति में कितनी प्रकृति का उपशम हो और कितनी प्रकृति का क्षय हो सूक्ष्म संकेत कहते हैं और सूक्ष्म संकेत के काल में प्रतीति क्वचित मंद होती है क्वचित तीव्र होती है यानी कभी जोर से प्रतीति का परिणमन होता है कभी उसका मंद परिणमन दिखता है तो कभी सूक्ष्म संकेत नाश भी प्राप्त नाश को भी प्राप्त हो जाता है उसको विसर्जन कहते हैं तो वहां सूक्ष्म संकेत रहा नहीं और क्वचित स्मरण रूप फिर वो नाश हो जाता है तो उसका स्मरण आता है कि सम्यक दशा मेरी ऐसी थी तो उसको सूक्ष्म संकेत को कहने में आता है एक सूक्ष्म संकेत सम्यक वाले को ऐसा परिणाम होते हैं
How is one figure?
पदार्थ पहले गुण स्थान में तो आ ही गया नाश होने से, लेकिन उक्षोक्षम था इसलिए विसर्जन हुआ। नहीं, फिर स्मरण आना दूसरी बात है, परिणाम आना दूसरी बात है। लेकिन शोक सम संकेत वाले को ऐसा होता है परिणाम, नहीं ऐसा होता है, ऐसी बात स्मरण रहता है। नहीं, ना उसमें क्या है कि सम्यक तो प्रकृति का उदय रहता है और बाकी के जो क्षय है उसमें किसी का क्षय और किसी का उपशम, क्षय और उपशम दोनों में अभाव ही है, उदय अभाव है और उदय एक ही प्रकृति का रहता है, जिसको संकित वृत्ति प्रकृति कहने में आता है। तो वो है वो घाटित प्रकृति, तो सम्यक्तो का घाटित प्रकृति मिथ्यात्व सम्यक्तो वेदनी मिथ्यात्व माने मिथ्या, तो उसमें जो संकित वेदनी है उसका उदय रहता है, मिश्र और मिथ्यात्व का नाश होता है। नाश या उपशम में भी उदय नहीं होता और क्षय में भी उदय नहीं होता, या तो क्षय होता है या तो उपशम होता है, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान ने देखा है कि उसको संकित वृत्ति का उदय है, हाँ संकित मन का उदय है, तो तीव्र मंदता होती है, तीव्र मंदता ये इतना फर्क पड़ता है, और वो संकित कमजोर होने से भाव को भी प्राप्त हो जाता है, और भाव को प्राप्त होता है तो उसका स्मरण रह भी सकता है और नहीं भी रहता है, दोनों बात मैंने प्रतीति प्रतीति चौकी है, प्रतीति का विषय भी शुद्धात्मा है और प्रतीति भी पूरी है, लेकिन तीव्र मंदता आ सकती है। उनको तो ऐसा लगता है जिसको सूक्ष्म समझती है, उसको तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरे आत्मस्वरूप के बराबर प्रतीति है और उसमें मुझे कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं, उसको तो ऐसा लगता है। और ऐसा भी सूक्ष्म रूप जो कथन है, सूक्ष्म कथन में ऐसी बात है कि कुछ श्रद्धान का मल है वो केवल ही गम्य है, न खुद को पता चलता है न दूसरे को भी पता चलता है, तो वो बात अप्रयोजन अनुभव में तो बराबर प्रतीति है, उसमें कोई फर्क नहीं दिखता है। आत्मा को जब आवरण उदय में आए, उस प्रतीति को जब तक सत्तागत आवरण उदय में नहीं आया तब तक उपशम सम्यक्त्व है, तो जो द्रव्य कर्म है वो सत्ता में सातों प्रकृतियों का चला जाता है, उदय किसी का नहीं रहता है, उदय का अभाव रहता है, लेकिन सत्ता में सातों प्रकृतियों नहीं है, उसको उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। और प्रथम ऐसा ही होता है, सबसे पहले सम्यक्त्व होता है और उपशम सम्यक्त्व ही होता है, और सातों प्रकृति दब जाती है सत्तामा, दब जाती है, दब दब करके सत्तामा सत्ता में रहती है, मैंने उसकी विद्यमानता रहती है, उदय उदय नहीं रहता है, ऐसी स्थिति बनती है। जानने का विषय, इसे जानने का विषय और खास बात उसमें थोड़ा स्पष्टीकरण देते हैं, ज्यादा ज्यादा स्पष्टता। अत्यंत प्रतीति होने के योग में सत्तागत अल्प पुद्गल का वेदन जहां रहा है उसे वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं, वो भी सूक्ष्म सम्यक्त्व को दूसरा नाम वेदक सम्यक्त्व को भी बोलने में आता है, तो उसमें अल्प प्रकृति का मैंने संकित होने का वेदन रहता है, तो संकित प्रतीति होने पर अन्य भाव संबंधी अहंत्व और ममत्व आदि का और हर्ष शोक का क्रमशः क्षय होता है। ऐसी प्रतीति होने पर अन्य भाव संबंधी जो अहंत्व और ममत्व आदि जो भी विभाव जो कुछ भी प्रकार है या हर्ष शोक का जो भी प्रकार है चारित्रमों का वो भी क्रमशः आहिस्ते आहिस्ते उसका भी नाश हो जाता है। ये प्रतीति होने से चारित्रमों के दोष भी क्रमशः नाश होगा, एक साथ नाश नहीं होगा लेकिन क्रमशः नाश हो जाएगा। मन रूपी योग में तारतम्य सहित जो कोई चारित्र की आराधना करता है वह सिद्धि पाता है और जो स्वरूप स्थिरता का सेवन करता है वह तो स्वभाव स्थिति प्राप्त करता है। अस्ति नास्ति से एक ही बात किया है कि मन रूपी योग में मैंने जो उपयोग है उसका तारतम्य सहित, तारतम्य मैंने डिग्री उग्रता से कोई चारित्र की आराधना करता है तो उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है, मैंने अपना निर्वाण पद की प्राप्ति आगे जाकर के होती है और वो डिग्री में अस्थि से नहीं तो स्वरूप स्थिरता करता है, स्वरूप स्थिरता का सेवन करता है तो वह स्वभाव स्थिति, स्वभाव स्थिति को या निर्वाण पद को उसकी प्राप्ति उसको होती है। ये बात कही चारित्र की। निरंतर स्वरूप लाभ स्वरूपाकार उपयोग का परिणमन इत्यादि स्वभाव अंतराय कर्म के क्षय से प्रकट होते हैं, वो मोक्ष की पर्याय होगी। अंतराय कर्म का नाश होने से मोक्ष की पर्याय होगी। निरंतर स्वरूप लाभ रहा करे, परिपूर्ण पूरा स्वरूप का लाभ होवे, उस लाभ में कोई कमी नहीं होवे। कमी कहाँ तक होती है? अंतराय कर्म का उदय होवे तब तक। तो निरंतर पूरा स्वरूप लाभ और स्वरूपाकार उपयोग सभी गुणों का स्वरूपाकार उपयोग हो, ऐसा जो परिणमन है इत्यादि स्वभाव पूरा स्वभाव प्रकट हो गया वो अंतराय कर्म के क्षय से प्रकट होता है। जो अंतराय कर्म पूरा क्षय हो गया तो पूरा स्वभाव परिणमन प्रकट हो गया और पूरा स्वरूप लाभ मिलने लगा, प्राप्त होने लगा। ये मोक्ष की परिभाषा है। और जो केवल स्वभाव परिणामी ज्ञान है वो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है। और निरंतर केवल स्वभाव परिणामी ज्ञान पूरा ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव है वैसा ही परिणमन ज्ञान में हुआ उसको केवल ज्ञान कहने में आता है। तो ज्ञान गुण पूरा पूरा खुल गया, निरावरण हो गया, वो केवल ज्ञान है। इस तरह से ये नॉन्ध में अनेक प्रकार के भावों का परिभाषा, भावों की व्याख्या अर्जुन ने अपने दृष्टिकोण से, खास दृष्टिकोण से की है। ये हुआ 700 तक है। अब कौन सा लेना है? आत्मचिंतन जैसा एक प्रकार है 23 साल का, 23 साल के आयु में आत्मचिंतन जैसा होता है मनुष्य को वो बात है। तो उस चिंतन में जीव अपने आप को संबोधन करता है कि हे जीव तू भ्रम में मत पड़, तुझे हित की बात कहता, खुद को खुद कहता है कि हे जीव तुम भ्रम में मत पड़ना, तेरे हित की बात अंतर से आई हो मैं कहता हूं कि अंतर में सुख है बाहर खोजने से संसार के सभी प्राणी चारों बच्चों सुख के लिए उद्यम बंद है, प्रयत्न बंद है और बाहर से सुख जुटाने के लिए उनका प्रयास अनादिकाल से चलता है। अनंत जीवों का अनंत काल से बाहर में से सुख लेने का प्रयास चलता है लेकिन वो असंभव और अशक्य होने से एक जीव को भी उसमें सफलता नहीं मिली। तो यहाँ कहते हैं कि सुख तो अंतर में है, बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई पदार्थ में तेरा सुख तो है ही नहीं, जब है नहीं तो मिलेगा कहाँ से। बालू में तेल नहीं है, तीली में तेल है, तिल में तेल है, बालू में तो नहीं है। अब आकृति एक सी हो या कलर भी एक सा हो बालू का और तिल का लेकिन बालू में से तेल निकलेगा तो है नहीं, कहाँ से निकलेगा, बालू में नहीं रहती। अंतर का सुख अंतर की समश्रेणी में है, उसमें स्थिति होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर और आश्चर्य भूल, बहुत मार्मिक बात किया है। अंतर का सुख अंतर की समश्रेणी में है, तो जैसा अंतर में आत्म तत्व है ठीक उसी बराबर परिणाम हो जाए। श्रेणी मैंने उसी वर्ग का, श्रेणी मैंने वर्ग, वर्ग मैंने क्वालिटी, सब मैंने जैसा स्वरूप है ऐसा बराबर, तो अंतर का तो सुख मिलेगा। अंतर का सुख अंतर में है, आत्मा में है और जैसा आत्मा है वैसा ही परिणाम तेरा हो जाए आत्मा रूप, तो ये सुख की प्राप्ति होगी। अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी रूप उसमें स्थित होने के लिए, ऐसे परिणामों में स्थित होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर और आश्चर्य भूल, ये आड़े आता है तुमको। समश्रेणी में कौन आड़े आता है कि बाह्य पदार्थ का तुम विस्मरण नहीं कर सकता, स्मरण ही करता रहता है, कभी इधर का कभी उधर का, कभी और आश्चर्य भूल। उसमें वो कहना चाहते हैं कि उसका मूल्य जो किया है उसका अवमूल्यन कर दे, उसमें कुछ नहीं रखा है, उसमें कुछ नहीं रखा है। इकट्ठे होते तो क्या चर्चा करते हैं, जगत के पदार्थ की चर्चा करते हैं, देखा इधर ऐसा ऐसा है उधर ऐसा ऐसा है, आजकल ये रिसर्च हुई है, आजकल फलाना वो है, हाँ ये चीज बहुत बढ़िया निकली है, उसकी कीमत और महिमा आश्चर्य से करता है, इतना वजन दे देता है, आश्चर्य से करता है। देखो भाई अमेरिका में उतना ऑटोमाइजेशन हो गया है आजकल, गाड़ी में बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से अपने बंगले का कंपाउंड का दरवाजा खोल सकते हैं क्या? गाड़ी में बैठे बैठे बटन दबा दो, दरवाजा खुल जाएगा। एक दूसरा बटन दबा दो, कंपाउंड की लाइटें हो जाएंगी। एक तीसरा बटन दबा दो, गैरेज का शटर खुल जाएगा। देखो रिमोट कंट्रोल क्या काम करता है। और ये सब बटन दबाते दबाते ऐसा बटन दब गया कि बेचैनी बढ़ गई। ये सब बटन दबाते दबाते क्या हुआ? बेचैनी का बटन दब गया, बेचैनी चालू हो गई। फिर उसको बेचैनी को खत्म करने का बटन उन लोगों के पास नहीं है। बहुत बातें आती है, अब देखा नहीं है। तुम्हें देखो कि प्रोविजन स्टोर वाला के पास कंप्यूटर रहता है तो अपने ग्राहक के लिए उनको मालूम पड़ जाता है कि आज फलाना के घर में ग्रोसरी भेजनी है, उसका कंप्यूटर बताएगा तो उसका टेलीफोन आएगा कि कंप्यूटर में आए आपको ग्रोसरी भेज रहे हैं। ग्रोसरी मैंने क्या? दाल नहीं है, चावल नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, उड़द नहीं है, मूंग नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है। क्योंकि आपके माल खत्म हो गया है, जो आपका यूज होता है उसमें इतने दिन के बाद आप ले गए थे तो उतने दिन के बाद आपको फिर सप्लाई करना होगा। ये कंप्यूटर बोलेगा, आपको लेने जाने की जरूरत नहीं है या देखने की जरूरत नहीं है कि अभी खत्म हो गया कि नहीं हो गया, उसका कंप्यूटर बोलेगा। लेकिन बेचैनी बढ़ेगी इसका क्या? तो उसका कोई बात नहीं है उसके पास। ये सब होकर के अशांति बढ़ती है इसका क्या? वो साइंस वो लोग नहीं जानते। बाकी सब साइंस जानते हैं, वो साइंस नहीं जानते। भौतिक विद्या काफी वो मानते हैं कि बहुत हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन साथ साथ अशांति में भी आगे बढ़ गए हैं, बड़े बड़े। ये बात मुमुक्षु क्या करता है कि मुमुक्षु दूसरे मुमुक्षु की पंचायत ज्यादा करता है। सबसे कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात मुमुक्षु की होती है तो वो होती है कि मुमुक्षु को मुमुक्षु का समूह होता है। फिर वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो क्या करता है, अंदर में उपयोग जाता नहीं, उपयोग बाहर का जाएगा तो उसका हृदय मुमुक्षु का समूह है तो वहां ही देखेगा। सबसे भयंकर अपराध मुमुक्षु भूमिका का सबसे भयंकर अपराध। प्रवचन तो हम सुनते थे लेकिन फलाना का ध्यान उधर था, इसका मतलब कि तेरा ध्यान उधर था। इसका मतलब क्या हुआ? वो लेट से आया, वो उधर बैठा, वो उधर, वो उधर,
उसका प्रयास कैसे चल रहा है, उसका कैसे चल रहा है, ये नहीं। हाँ,
कौन क्या सोचता है, कौन का किसका प्रयत्न चलता है, चलता है कि नहीं चलता है, किसका परिणाम कैसा होता है। अपना परिणाम दिखाना, ये बात चल रही है कि दूसरे का परिणाम देखने को हमें कोई आवश्यकता
है।
आपको ऐसे विषय में किस तरह से भाव आ सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको कैसे आ रहे हैं उसको जानने का मेरा कौतूहल होना नहीं चाहिए। वो जरूरत, वो अपने को जरूरी नहीं है। जिसका जैसा चलता हो वैसा वो जाने, इसका काम वो जाने, हमको देखना नहीं है।
नहीं,
उसमें क्या है कि वहां भी जगत के पदार्थों का कुतूहल करता था, ये भी जगत के ही पदार्थ है, दूसरे में मुख्य और क्या है, अपना स्वरूप थोड़ी ना है, वह ये करता है, ये सबसे बड़ा अपराध वो करता है। लगता है मामूली वो अपराध, लेकिन ये सबसे बड़ा अपराध है कि उसको ये अपराध आगे बढ़ने देगा नहीं। क्या सत्संग में प्राप्त बोध को निष्फल कर देगा, क्या करेगा, निष्फल कर, सफल नहीं होने देगा, और अपने को जो बात समझ में आई है उसका अमलीकरण करने का बल नहीं आएगा। ये सब प्रकार की प्रयोजन भूत भूलें या क्षतियां ये पर लक्ष्य से पैदा हो जाती है। इसलिए जिसको अपना आत्म कल्याण करना हो उसको विष्णु जगत के पदार्थ का विस्मरण करना, क्या लिखा है, बाह्य पदार्थ का, मेरे से सब बाह्य है, उसका विस्मरण करना, सबका शटर बंद कर देना, बस खत्म। और आश्चर्य भूलना, ऐसा क्यों, इसको ऐसा क्यों हुआ, ये आश्चर्य है, कुतूहल है, आश्चर्य मैंने कुतूहल, इसको ऐसा क्यों होता है, इसको ऐसा क्यों होता है, मुमुक्षु है फिर भी ऐसा क्यों होता है, मुमुक्षु में भी विचित्रता होती है और अनेक प्रकार की विचित्रता होती है, आश्चर्य को भूल जा, विस्मरण कर दो, हमको एक निष्ठा से, एक लक्ष्य से, एक अपना आत्म कल्याण के सिवा कुछ विचार करना नहीं है। तब तो सम श्रेणी में अंतर्मुख होने का अवसर आएगा या अवकाश प्राप्त होगा, वरना अवकाश प्राप्त होगा। या तो कहते हैं कि दूसरे दूसरे का विकल्प ही छोड़ दो, दूसरे का विकल्प ही छोड़ दो, सत्संग करना है दूसरे के साथ तो केवल अपना आत्म कल्याण के लिए, एक ही मोटिव, एक ही हेतु, एक ही लक्ष्य, दूसरी बात बीच में आ गई तो हाथ जोड़ देना, सामने वाला करे तो भी, अपने को तो करना ही नहीं, लेकिन अगर सामने वाला कर दे तो हाथ जोड़ देना, ऐसी बातों में हमको रस नहीं आता। और आप ऐसी बातों में रस लेते हैं वो हमको पसंद भी नहीं आता है, फिर भी आप लेंगे तो हम आपका संग नहीं करेंगे। समश्रेणी रहना परिणाम दौड़ेगा और ज्ञान स्वपर प्रकाशक होने से दूसरे की बात जानने में भी आएगी, लेकिन उसको गौण, एकदम गौण कर देना, एकदम गौण कर देना कि हमें कोई प्रयोजन नहीं, हमें कोई मतलब, मेरे को क्या मतलब है, मुझे कोई प्रयोजन नहीं, हम तो इस बात का बात लक्ष्य में लें, पहले मुमुक्षु नहीं था तब तो सारी दुनिया की पंचायत करता ही था, हमने देखा था ये अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही थी ना, तो ये प्रेसिडेंट बुश को यहाँ से हमला करना चाहिए, ईरान को यहाँ से हमला करना चाहिए। वो उनके पास युग लड़ाई के व्यू करने वाले एक्सपर्ट होते हैं, इसका भी गुरु बन जाता है, प्रेसिडेंट को भी सिखाने का फालतू का विकल्प है और आश्चर्य करता है। देखो उसके ईरान वालों की कितनी तैयारी थी, कितने बड़े बड़े वो बनाए थे, क्या वो जमीन में बनाते हैं
बोर्ड,
जैसे बनाए थे वैसे बनाए थे। वो हुआ क्या जरूरत है, बिना मतलब की सारी दुनिया की चिंता करता था। अब मुमुक्षु की भूमिका में आया तो इधर उधर देखने लगा, इसकी वो दुनिया इधर दुनिया बनाई, वो दुनिया छोड़ करके नई दुनिया यहाँ बसा ली, तो बात तो वो की वो हो गई। पंचातिया था वो पंचातिया रहा, क्या फर्क पड़ा, मुमुक्षु बना ही नहीं, पहले भी पंचातिया था अभी भी पंचातिया रहा, क्या फर्क पड़ा, ये कोई फर्क तो नहीं पड़ा। ओ नामधारी मुमुक्षु है, बाकी इधर उधर देखता है वो पंचातिया ही। पुनः पुनः वृत्ति चलित हो जाएगी, चलित न होने के लिए अचल अचल गंभीर उपयोग रख, उपयोग मैंने सावधानी, इस प्रकार से बार बार वृत्ति चलित नहीं हो इसके लिए गंभीरता से सावधानी रख। गंभीर शब्द का प्रयोग क्यों किया, बहुत नुकसान होता है, थोड़ा नुकसान नहीं होता है, बहुत नुकसान होता है, इसकी गंभीरता समझ ले कि तेरा सब बाकी का जो मुमुक्षु के लायक प्रवृत्ति का जितना भी प्रकार है और समय का और शक्ति का खर्चा है सब फालतू जाएगा, सब निष्फल जाएगा, नुकसान समझ में नहीं आता है ना, तो इसलिए उसकी गंभीरता उसको मालूम पड़ती नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा नुकसान होता है, मनुष्य आयु चला जाता है और बहुत बड़ा लाभ होने से वंचित रह जाता है। ये बात होती है क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलता नहीं है। वह क्रम यथा योग्य रूप से चलता आया तो तू जीवन का त्याग करता रहेगा, हताश नहीं होगा, निर्भय होगा। यह क्रम मैंने ऊपर कही जो बात कि अंतर का सुख अंतर की संश्रेणी में है, इसके लिए तू बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर और आश्चर्य भूल, अगर वो बात तुमने किया तो तू इस प्रकार के जीवन का त्याग करता रहेगा, कभी भी हताश नहीं होगा और सदा ही निर्भय हो जाएगा। गुजराती में शुभ संतोष है, आक्रम यथा योग्य पणे चाइलो आयो तो चलता आया तो जीवन त्याग करतो रही। जीवन माने क्या, उपाधिमय जीवन का त्याग हो जाएगा, जीवन मैंने मर जाएगा वो नहीं, जीवन का त्याग मैंने मृत्यु वो बात इधर नहीं है, तेरा उपाधिमय जीवन है उस वो खत्म हो जाएगा, अंतर में अंतर का सुख निरुपाधिक सुख प्राप्त हो जाएगा, तो तेरा जो बाह्य जीवन है उपाधि रूप अशांत जीवन है वो त्याग हो जाएगा, मैंने खत्म हो जाएगा, वो उसका नाश हो जाएगा। तो उपाधि जीवन का वो विशेषण अत्याहार है, उपाधिमय जीवन, दुखमय जीवन उसका नाश हो जाएगा। और तुमको मुंझाने की जरूरत नहीं है, हताश नहीं होगा। गुजराती में मुंझवण, मुंझाइश नहीं, पशु को क्या मुंझाइश नहीं, सर्वांग समाधान रहेगा। ये मार्ग सर्वांग समाधान का है। तुझे कहीं भी असमाधान हो करके अकुलाहट होगी, उलझन नहीं होगी, कोई मुंझवण नहीं होगी और एकदम निर्भय हो जाएगा। मृत्यु का भय नहीं आयो हो रहेगा, फिर दूसरा भय तो कहाँ से होगा, सब इसके नीचे का है। जगत में जितने भी भय के परिणाम हैं, उसमें सबसे ज्यादा भय मृत्यु का है। कोई चला जाएगा, कहने की जरूरत नहीं कि दूसरा भय चला जाएगा, सब प्रकार के भय चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। न टेंशन रहेगा, न मृत्यु का भय होगा, न कोई दुखमय और उपाधिमय जीवन रहेगा। हर हालत में निरुपाधि जीवन हो जाएगा। बाहर की परिस्थिति ध्रुव क्षेत्र काल भाव तो प्रारब्ध अधीन होगा, पूर्व प्रारब्ध अनुसार हो सकता है, लेकिन तुझे कहीं भी दुख होगा नहीं। एक ऐसा मंत्र तेरे हाथ में आ जाएगा। क्या मंत्र? कि वो मंत्र की शक्ति ऐसी होगी कि तुम कभी दुखी नहीं होगा, किसी भी हालत में दुखी नहीं होगा। और आप बता दो, प्रश्न करके पूछ लो कि ऐसे हालत में तो दुख होता है कि नहीं होता है। तो लाओ एक भी प्रश्न लाओ, इसका समाधान मिल जाएगा कि ऐसे हालत में दुख होगा कि नहीं होगा। बताओ, एक भी प्रश्न निकालो कि जगत के दुख का एक भी प्रसंग ले आओ, प्रश्न के रूप में ले आओ कि ऐसा हो तो दुख होता है कि नहीं होता है, इसका समाधान मिल जाएगा। है कोई प्रश्न ऐसा हो तो बता दो। अपने उलझन वाली बात हो, अपने दुख वाली बात हो, ले आओ ना सामने। नहीं है किसी को? नहीं है, है? लगता है सब सुखी हो गए। बात ऐसी है, तो दुखी हो के नहीं है, फीलिंग में तो दुख है के नहीं है, तो समस्या है के नहीं है। बौद्धिक स्तर में आए और उपाधि गई नहीं, क्या फायदा? ये बुद्धि का फायदा क्या? बुद्धि ने बोझ तो उठाया और काम तो कुछ हुआ नहीं। और इसलिए दुखी रहा, तो ये तो प्रश्न उठाओ कि ऐसा क्यों हुआ। तो बौद्धिक स्तर में आए और फीलिंग स्तर में क्यों नहीं आए, जिससे हमारा दुख गया नहीं, चालू रहा, ये प्रश्न उठाना चाहिए। हाँ, नहीं उठाना चाहिए क्या? हमारे मुमुक्षु ने उठाया था इन दिनों में। परिभ्रमण की वेदना की चर्चाएं बहुत चल रही थी। अजीत भाई है इंजीनियर, उसने प्रश्न उठाया था कि अब रोज ये चर्चा चलती है तो बात तो बराबर समझ में आती है, फिर समझ में आने पर भी वेदना नहीं चालू होती है हमको, तो हमारे में ऐसा क्या कारण है? समझते तो है बराबर। दृष्टांत वो चला था कि एक मरण का कारण रूप कैंसर जब डायग्नोस होता है कि फाइनल कैंसर है, तो उसकी चिंता छोड़ नहीं सकते, छोड़ना चाहे तो मृत्यु नहीं हुई है, मरण का कारण है वो, मृत्यु का कारण है। इतनी मृत्यु की चिंता है क्या, मृत्यु के कारण की इतनी चिंता है और कारण के कारण की भी चिंता होती है। तो अनंत मृत्यु का चिंता नहीं होती है, ऐसा जो परिभ्रमण का कारण वो हमारे ही परिणाम, इस विषय में हमको क्यों चिंता नहीं होती है, प्रश्न उठाया था। उसको कुछ फील क्यों नहीं होता है, चिंतन फीलिंग में क्यों नहीं आते हैं? ये जो समझ में आया है उसमें वास्तविकता का अभाव है।
क्या समझ
है? नहीं, नहीं, वास्तविकता मैंने एक मृत्यु की वास्तविकता आने से भय लगता है पर चिंता होती है, और अनंत मृत्यु की वास्तविकता नहीं कल्पना होती है इसलिए भय नहीं लगता है। वो मृत्यु सामने दिखता है वास्तविक, और ये अनंत मृत्यु सामने नहीं दिखता है वास्तविक रूप से, इसलिए उसका भय नहीं, उसका फीलिंग नहीं होता है। और इसका कारण क्या, तो खोद खोद के प्रश्न निकाले थे कि इसका कारण क्या, कि इसका कारण इसलिए कि हम अपने आप को शामिल करते हैं, ये मेरा ये होगा, ये अनंत जन्म मरण मेरा होगा। सुनते हैं तो थर्ड पर्सन की बात लगती है, तो दूसरे का होगा उसमें अपने को कुछ होने वाला नहीं है, और अपने तो थोड़ा भी होगा ना तो बर्दाश्त करेगा, कोई थोड़ा भी बोल देता है तो कैसा फील होता है, है? थोड़ा भी बोल दे हाँ कि तुम तो ऐसे हो, तो बराबर लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि इसमें अपने आप को शामिल कर दिया, वो तो अपने आप को शामिल नहीं करता है, तो कुछ लगेगा नहीं। ये जीव का स्वभाव है कि अपने पैर नीचे पानी आता है तो सबको लगता है, जब अपने पैर नीचे नहीं आता है तो सारी दुनिया की चिंता करता है, पंचायत करता है और सबको उपदेश देने लगता है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। ये बात यहाँ तक।